नारायणं नमस्कृत्य नरं सेवानरुत्तमम् देवीं सरस्वतीं यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नास्तिके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध आश्रय तत्व नवा अध्याय का 19वां श्लोक चर्चा करेंगे। एवं संदर्शिता हंगा हरिणा भृच वश्यता स्वा वशेनापि कृष्णेना यश्चेदम् वशी एवं संदर्शिता ह्यांगा हरिणा भृत्यवश्यता स्वावशीनापि कृष्णेना यस्येदं सेश्वरं वशी एवं संदर्शिता ह्यांगा हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेना यस्येदं सेश्वरं वशे एवं संदर्शिता ह्यांगा हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेना यस्येदं सेश्वरं वशे। एवं संदर्शिता ह्यांगा हरिणा भृत्यवश्यता स्वावशेनापि कृष्णेना यस्येदं सेश्वरं वशे एवं संदर्शिता ह्यांगा हरिणा भृत्यवश्यता स्वावशेनापि कृष्णेना हरिणा भृत्यवश्यता स्वावशेनापि कृष्णेना माताजी एवं संदर्शिता ह्यांगा हरिणा भृत्यवश्यता एवं किस प्रकार संदर्शिता प्रदर्शित किया गया कि निस्संदेह अंग हे महाराज परीक्षित हरिणा भगवान द्वारा भृत्यवश्यता अपने सेवक या भक्त की अधीनता स्वीकार करने का गुण स्वावशेना जो केवल अपने वश में रहे अपि निस्संदेह कृष्णेना कृष्ण द्वारा यस्य जिसके हृदम इदम संपूर्ण ब्रह्मांड स ईश्वरम शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं सहित वशे वश में अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रपाद द्वारा श्रील प्रपाद की। हे महाराज परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान के एक दिव्य गुण ये है कि वे अपने भक्तों के वश में हैं, हो जाते हैं। यही बात इसलिए लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। तात्पर्य, कृष्ण की इस लीला को समझ पाना दुष्कर है, किंतु भक्तगण इसे समझ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, दर्शय सद्विद्वान लोक आत्मनि भक्त वश्यताम, भागवतम दशम स्कंध के 11वां अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान अपने भक्तों के वश में होने के गुण प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय का 35वां श्लोक में कहा गया, एकोक्त सौ रचयितुम जगदंड कोटि यक्षक्तिरस्ति जगदंडतयाम यदंता अंडांतरस्त परमानुचरांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अपने एक अंश परमात्मा से भगवान असंख्य ब्रह्मांडों एवं अनेक देवताओं को नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया कि भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकता है, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी कृष्ण पराजित हुए और माता यशोदा द्वारा पकड़ लिए गए। लक्ष्मी सहस्त्र शतसम भ्रम सेव्यमानम, कृष्ण को सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं, फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं जैसे कि कोई भूख का मारा हो। यद्यपि सारे जीवों का नियंत्रक यमराज कृष्ण से भयभीत रहता है, फिर भी कृष्ण अपनी माता की सोची से भयभीत हैं। इस विरोधाभास को अभक्त नहीं समझ सकता है, किंतु भक्त समझ सकता है कि कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है। इतनी बलवान है कि कृष्ण को एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है। इस वृत्तवशता का अर्थ ये नहीं है कि वे अपने दास के वश में हैं, प्रत्युत वे दास के शुद्ध प्रेम के वश में रहते हैं। भगवद्गीता 1 अध्याय का 21वां श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने उन्हें आदेश दिया, तेनुयोर भयोर मध्ये रसम स्थापय में च्युता, हे कृष्ण, आपने मेरा सारथी बनना और मेरे आदेशों का पालन करना स्वीकार किया है, अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो। कृष्ण ने तुरंत इस आदेश का पालन किया। अतएव ये तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहते हैं, किंतु ये तो मनुष्य का अपना अज्ञान है। कृष्ण सदैव पूर्ण स्वतंत्र है। जब वे अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो वो आनंद चिन्मय रस का प्रदर्शन होता है, जो उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला है होता है। हर व्यक्ति कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में करता है, अतएव कभी कभी वे किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं। ऐसा नियंत्रक एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे हो सकता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानुतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्रीकांतम च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्ति रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्रीरामाशरणं समस्त जगतं रामं विना का गति रामेणा प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय काजं नमः रामात्रासति काल भीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामे त्वमेवाश्रया वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 वंशी विभूषित करानल नीरजाभ पीतांबराधरुण बिंब पलाधरोष पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरे कृष्णा। आज का ये अध्याय दामोदर लीला का चल रहा, ये विशेष है भगवान का। हमें जब भी कथा सुनते हैं भगवान क्या बोलते हैं भगवद्गीता में, जन्म कर्म च मेदीयम एवं यो वेति तत्त्वतः, बोले ना भगवान बोलते हैं कि भगवान का लीला, भगवान का प्रकट होना, भगवान जन्म नहीं लेते आप और हमारे जैसे प्रकट होते हैं, भगवान का प्रकट होना और भगवान का लीला उनको तत्व रूप से समझना चाहिए। यदि नहीं समझेंगे तो कथा था कभी कथा रहेगा, कथा से हमारे को रुचि होता है, आनंद मिलता है, आकर्षण होता है, मन को भाव अच्छा भास होता है, परंतु उसके बाद उसका तत्व चिंतन भी करना चाहिए। तत्व चिंतन नहीं करेंगे फिर कथा जैसा ही रह जाएगा। भगवान का हरेक कार्य में कोई तत्व होता है, हम जो काम करते हैं ऐसे करते हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन भगवान का हरेक कार्य के पीछे कुछ तत्व है, वो तत्व समझना चाहिए। तत्व को कैसे समझेंगे, केवल भक्ति द्वारा ही। भगवान भगवद्गीता में दो स्थान पर 11 अध्याय का 54 श्लोक में और 18 अध्याय का 55 श्लोक में स्पष्ट करते हैं, भक्त्या तनन्या शक्यहमेवो विधोर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, माँ बार बार बोलती है बेटे उस नए आदमी से बात मत करो, किसी रात से मत खाओ, बोलते हैं ना बच्चों को, छोटा बच्चा है, दो तीन दफा दो रात है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार भगवद्गीता में भी पूरा 700 श्लोक में भगवान कृष्ण जो है एक ही आदेश को दोबारा दोहराया, नहीं केवल ये भक्ति का ही बताया गया। फिर सारा अध्याय बताते थे, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यस्यात्म तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्म विशते तदनन्तरम्। बाकी कोई इंस्ट्रक्शन आपको दोहराते हुए मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन ये भक्ति कहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि अपना भक्त जो है भगवान का लीलाओं को तत्व द्वारा तत्व रूप से समझना है, उसके लिए एक आश्रय है केवल भक्ति। श्रील प्रभुपाद व्याख्या में लिखते हैं कि नॉन डूइंग कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो अभक्त है भगवान के लीलाओं को समझे हुए नहीं है, क्योंकि अपना पांडित के तौर पर मैं पीएचडी किया हूँ साहित्य में, संस्कृत में पीएचडी किया हूँ, बस पीएचडी तक रह जाओ, जो वही अहंकार में रहेगा फिर कुछ समझेगा नहीं। लेकिन जो अहंकार से मुक्त होकर भगवान का भक्त बनते हुए सेवा करते हुए, भगवान सब कुछ है मैं कुछ नहीं, उनका हाथ में खिलौना हूं, इस भाव से जब करते रहेंगे, दीन भाव से भगवान को, भक्तों का दीन भाव उसको बड़ा भाता है, अहंकार भगवान का अच्छा नहीं लगता। आप देखते हैं भगवान का लीलाओं में, महारास में, जब रासलीला में जब भगवान अपना आप को हरेक गोपी के साथ प्रकट हुआ और हरेक गोपी सोचे हैं कि ओ मैं बहुत सुंदर हूं, कृष्ण मेरे को प्रसन्न करता है, गोपी हरेक गोपी देख रहे हैं कि मेरे पास ही कृष्ण है, बाकी के पास नहीं है, केवल राधा रानी देख रही है हरेक के पास कृष्ण है, हरेक गोपी सोच रहे हैं कि मैं इतना सुंदर हूं, कृष्ण मेरे को बहुत लाइक करता है। जब इस प्रकार भाव आ गया तुरंत भगवान अदृश्य हो गया, अदृश्य होने के बाद तुरंत समस्त गोपियां जो है गोपी गीत जो है गाते हैं ना कार्तिक मंथ में, फिर उसके पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप जो है भगवान जो है फिर प्रकट होकर उनको आनंद दिया। कहने का अर्थ है कि भक्तों में किसी प्रकार का अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता, किसी प्रकार के, जब तक हम अहंकार में रहेंगे भगवान को प्रिय कैसे होंगे। काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर्य छह अनर्थों से पूर्णता मुक्त होना पड़ेगा हमें यदि भगवान प्रिय होना चाहता है। भगवद्गीता में भगवान भी कहते हैं ना भक्तों के गुणों का सबसे पहले कौन सा गुण भगवान के लिए सुंदर अच्छा लगता प्रिय लगते हैं, अदृष्टा सर्वभूता नाम करणी वचा निर्ममो निरहंकार समदुख सुखक्षमी, 13 से लेकर 20 तक आखिरी श्लोक जो है बहुत भक्तों का कौन सा गुण है भगवान को अच्छा प्रिय है, और उसमें सब बोलते हैं कि सब भगवान बोलते हैं अदृष्टा सर्वभूता नाम, ये भक्त से किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना है। अब जब तक द्वेष हमारा में अहंकार रहेगा द्वेष तो रहेगा ही, अहंकार बड़ा भाई है उसका छोटा भाई है द्वेष है, और जब तक अहंकार रहेगा हम किसी के लिए भगवान के प्रिय तो छोड़ो अपना साथियों के लिए भी प्रिय नहीं बने बन सकते हैं। जैसे जैसे अहंकार हो गया सिर उठा कर चलते रहेगा, सामने खड्डा भी है पता नहीं चले गिर जाएगा, जब दीन भाव से रहे अरे मेरे पास कुछ नहीं है सिर झुका कर चलेगा खड्डा दिखा देगा वो कभी गिर पड़ेगा नहीं। सामाजिक तौर पर भी है बहुत, और आध्यात्मिक तौर पर भी आध्यात्म, बस जब तक हम अहंकार से मुक्त नहीं होंगे ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, हम निरंतर दास है, दास के लिए किस प्रकार का अहंकार है। तो यहां पर देख सकते हैं कि भगवान जो है जो लीला कर रहे हैं दामोदर लीला कर रहे हैं, तो ये शुद्ध भक्ति का और भक्तों का भक्ति का महिमा बता रहे हैं भगवान। शुरू में इस अध्याय का प्रथम श्लोक में बोलते हैं एकदाग्रदासी श्री यशोदानंद गिनी कर्मांतरनिक्ता निर्ममंत स्वयं दधी, दीपावली का दिन था एक दामोदर लीला, दिवाली के दीपावली का दिन लीला हुआ है, रानी है रजेश, लेकिन समस्त जितने भी सेवा सेवक और सेविकाएं थे सभी अपना अपना कार्य में नियुक्त करते हुए अपना भगवान श्री कृष्ण को, अपना कृष्ण को, कन्हैया को स्वयं सेवा करना चाहते, माता अपने बालकों को बालिकाओं को स्वयं सेवा करेंगे प्रेम होता है। आजकल जो है इधर तो इंडिया में फिर भी ठीक है, बाहर के देशों में जो है तो मेड सर्वेंट को देते हैं, जब बच्चे सुबह सोते रहते हैं वो काम पर चले जाते पति पत्नी माँ बाप, अब जब शाम को आप आते हैं तो बच्चा सोते रहता है, और दिन भर उनके लिए माँ कौन है, जो दाई होते वही है। और जैसे ही भगवान बच्चों को भूख लगा बॉटल पकड़ा देंगे, रोने लगे तो टीवी ऑन करेंगे, टीवी देखते देखते हुए कार्टून देखते हैं ये भी बड़ा होकर कार्टून ही बन जाता है, बचपन में छोटा बॉटल मांगता था दूध का, बड़ा होने के बाद बड़ा बॉटल मांगेगा, बड़ा हो गया बड़ा ही चाहिए ना, छोटा नहीं चलेगा, फिर बाद में रोते रहेंगे हम, बेटा हमारा बात सुनता नहीं, फिर कैसे सुनेगा। बच्चों को तो अपना माँ का प्रेम नहीं मिला। और यहाँ पर देखते साक्षात यशोदा महारानी, यशोदा मैया स्वयं अपना बच्चे की सेवा करने के लिए स्वयं अपना दजमंथन करने लगे थे। और करते हुए क्या किया है, यानी कानी से गीतानी तद्बाल चरितान चा दज निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। जब भगवान का मनसा वाचा कर्मणा पूर्णतः जब स्मरण करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान का अवश्य हमारे पास आना ही पड़ेगा। यहां देव यशोदा मैया देख सकते हैं, यानी कान से गीतानी, अभी शरीर से मंथन कर रही, दही को बना रही हूं, मक्खन बनाना था, और वाक से क्या कर रहे हैं, कृष्ण के बाल्य लीलाओं को गांव में जाए, आप सभी गांव में कहीं हैं, गांव वाले अपने ही ढंग से गान बनाते नहीं, लोकगीत बोलते हैं ना, उसके कोई संगीत का कोई जरूरत नहीं है, वो अलग मथुर रहता है अपना अपना भाषा में। और लोक गीत जो गांव में बचपन से पूतना वध से लेकर शकटासुर का ये सभी तृणावर्त का वध, ये सभी जो देखे हैं, उनका बाल देवता गांव वाले जो गीत बनाया था उसको गाना गाते हुए और मन से अपना कृष्ण कन्हैया को सुंदर रूप का स्मरण करते हुए, मन में भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप स्मरण कर रहे हैं। उनको मालूम है कि मेरा पुत्र भगवान है, लेकिन कोई भी हो, भगवान भगवान ही, आप किसी रूप से उनको प्रेम करो, किसी रूप से प्रेम करो। कंस जो है उसको दुश्मन के रूप में प्रेम किया था ना, जहां कंस का इतना उच्च स्तर कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना हुआ कि कहीं भी देखते कि केवल कृष्ण ही दिखता था और कुछ नहीं है। उस व्याख्या में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, लेकिन भाव क्या है, भय से, शत्रुत्व भाव से, अन्यथा उसको तो अभी हमारा में कहीं भी देखो कृष्ण का अलावा कोई दिखता है ही नहीं हम लोग, लेकिन उसको तो किसी से बात भी कर रहा आंखों में देख रहा कालापन, जा रहे भाई किधर कृष्ण है, पानी भी पी रहा उसने कहीं कालापन दिखाई दिया तो कृष्ण मेरे पेट में जाकर पेट फाड़ देगा, इतना भावना हुआ था, लेकिन मतलब कमी क्या था, शत्रुत्व भाव से, फिर भी भगवान भगवान ही है, किसी भी भाव से करो उसके फल एक ही है मुक्ति, उनको सही जो मुक्ति मिला है जो वैष्णव नहीं चाहते हैं। यहां आप सब देख सकते हैं यशोदा मैया भी मनसा वाचा कर्मणा जो भगवान के लीलाओं को गा रही, स्मरण कर रही, सेवा कर रही, और भगवान तो सो रहा था, कन्हैया तो सो रहा था, लेकिन जब आप मैया जो है मनसा वाचा कर्मणा उनको पुकार रहे तो सोचा कि चलो भाई बोला कह रहा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, आकर जो है मंथनी को पकड़कर भगवान मैया का तरफ देखते हैं। मैया सोचा मेरा लाल आपको जो है भूख लगा होगा, भगवान से बोलना चाहे गुरुत्वाद मंथनम, एकदम उसको मंथनी को पकड़कर देख रहे हैं। भगवान कहना चाहता था कि मैया मैं तो आ गया, अभी तुम्हारा पूजा सफल हो गया, तुम बुलाया मनसा वाचा कर्मणा, शुद्ध भक्ति से शुद्ध प्रेम से मेरे बुलाए हो, अब मैं तुम्हारे पास हूं, लेकिन माँ जो है अपना मातृ प्रेम के कारण जो है वो भाव को नहीं समझा, भक्त जो है हमेशा भगवान को अपने ही भाव में रहता है। इस प्रकार का भगवान जो है उनको दर्शन देने के बाद लीला से देते हुए, ज्यादा लीला में नहीं जाएंगे, समय का अभाव भी होता है, तो कल भी प्रभु बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे थे। मैया भगवान कृष्ण को बंधने के लिए यत्न कर रहे थे, पकड़ने के लिए दौड़ रहे, पीछे दौड़ रहे हैं। जो योगी हजारों वर्ष घोर तपस्या करके समाधि में जाकर भी उस ब्रह्म को पकड़ नहीं पाते हैं, यदि पकड़ भी लेते एक क्षण के लिए भी आ जाते हैं, उसके बाद अदृश्य हो जाते हैं समाधि में भी, कि क्या ज्यादा दिन तक देखते नहीं है, कभी देखेंगे बस हो गए, उसके बाद भगवान फिर अंतर्धान हो जाते हैं। ऐसा परब्रह्म को जो योगी लाखों वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी पकड़ नहीं पाते हैं, ऐसा भगवान को एक गोपी पकड़ना चाहती है, जिसका अंतर नहीं, बाहर नहीं है, आदि नहीं, मध्य नहीं, शुरू नहीं है, न चांतर बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम वैश्चांतर जगतो जो जगत सया, जो जिसका अंत ही नहीं है कहां पकड़ोगे भाई, कोई अंत है तो पकड़ोगे ना, यहां से शुरू हुआ यहां से समाप्त हो रहा, ना शुरू है ना अंत भी पता नहीं उसको कहां पकड़ोगे, लेकिन गोपी पकड़ना चाहती है यशोदा मैया। प्रेम का भूखा भगवान है, प्रेम का प्यास है, भक्त के इतना प्रेम कर रहे हैं, इतने प्रेम से उनको सेवा करना चाहते हैं और परिश्रम करना चाहिए। जब तक भगवान जो है हम परिश्रम करने नहीं है भगवान को प्रिय नहीं हो सकता। यहां पर इस लीला में हम अर्थ ही संबोधन करना चाहते हैं कि हम एक भक्त का अपना परिश्रम चाहिए, एंडीवर चाहिए और भगवान का कृपा चाहिए। जब तक हम परिश्रम नहीं करते हैं भक्ति में और भगवान को कृपा नहीं मिलेगा। जब देखा है कि माँ यशोदा इनको पकड़ने के लिए दौड़ते दौड़ते उसका केस खुल गया, केस में फूल जो सजाया था वो फूल गिर गया, वस्त्र भी ढीलापन आ गया और माता थकी हुई है, इसलिए देखते हुए इतना परिश्रम देखा है कि वो माता का माथे से पसीना भी आ रहा, ये देखते भगवान को जो है दया आ गया, अभी मेरा माँ जो है थका हुआ है इसलिए अभी मैं बंधने के लिए स्वीकार करता हूं। यहां इसलिए आप बोलते हैं कि एवं संदर्शिता अहंगारिना भृत्यवश्यता स्वावशेना कृष्णा यश्चेदं ईश्वरं वते। वो परब्रह्म जो समस्त ईश्वर अर्थ है, जो नियंता है विश्व का, सब तीनों नियंता कौन है, सबसे बड़े एक तो इंद्र आ जाता है, इंद्र से भी नहीं होगा तब ब्रह्मा, ब्रह्मा और चीजी भी नियंता है, उससे परे क्षीरोदुक्षाय विष्णु इस भौतिक जगत के लिए नियंता, जो कृष्ण है सभी का नियंता है, समय ईश्वरों का भी नियंता है। ऐसी भगवान जो है भक्त अपना भक्तों का प्रेम के अधीन होकर जो है स्वयं बंधने के लिए स्वीकार स्वावशेनापि, क्यों भगवान के एक विशेष गुण है। जब भक्त पूर्णतः भगवान निरपाध है निरपेक्ष है, यह भक्ति भी निरपेक्ष भाव से निरपाध भाव से इस भाव से जब हम भगवान की सेवा करेंगे निर्मोह होकर, भगवान भी भक्त का लिए जितना हम स्मरण करते हैं भगवान भी आप भक्त का इतने ही स्मरण करते हैं। हे अमाम प्रपद्यंते ताम तथैव भजाम्य हम, उधर भाव यह होना चाहिए कि अपना कोई इच्छा नहीं होते और तब भगवान भक्त का वश में हो जाते हैं। जिस प्रकार हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं भगवान बोलते हैं मेरा भक्त का सेवा मैं करना चाहता हूं। अर्जुन का जो सारथी बना, श्रील प्रभुपाद जी इसमें कोटने लिखते हैं व्याख्या में, अर्जुन का सारथी बना, भगवान कहां ड्राइवर कहां बनना, लेकिन सारथी बना है और रथी जो आज्ञा देता उसको मानना ही पड़ेगा और भगवान को उसमें आनंद आता है। उद्धव गीत में भगवान उद्धव को समझाते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतिम निर्भयम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम निच्चम पुयेतांग हृदयेण भी। हे उद्धव, जो भक्त मेरा निरपेक्ष भाव से भाव सेवा करते हैं भक्ति करते हैं शांत है, क्योंकि कोई अपेक्षा ही नहीं है, हमारा अशांति का कारण क्या इच्छाएं है ना, मेरे को वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, जितना इच्छा बढ़ जाता उतना ही हमारा दुख भी बढ़ जाएगा अशांति बढ़ जाता। अब भगवान का भक्ति करते मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ भगवान का प्रसन्नता, बस भगवान मेरे सेवा से प्रसन्न बस हो गए, वही किसी पर मेरे लिए कोई चाहिए नहीं चाहिए निरपेक्षम, ऐसा होने से वो शांत रहता भक्त, अशांत है कोई अपेक्षा नहीं किसी चीज का लालसा नहीं, इसलिए किसी से द्वेष भाव भी नहीं उसमें, वो शांत स्वभाव है। समदर्शन वो क्यों, क्योंकि इसी प्रकार की इच्छा नहीं है, किसी से द्वेष भाव नहीं करेगा, समस्त जीव समदर्शी है। भक्त के एक गुण होना चाहिए कि किसी से भी भेदभाव नहीं करें, यहां तक कि केवल भक्त या मनुष्य ने किसी से भी भक्त भेदभाव नहीं करना चाहिए। भक्त जो है शरीर को नहीं देखता लेकिन शरीर का अंतस्थ जो आत्मा परमात्मा को देखता है, इसलिए जो भी भक्त है किसी को देखते हैं वो इसको पूरे जन्म का कर्म फल के कारण है इस प्रकार है, परंतु हम इसको उद्धार करना चाहिए। इसलिए हर वक्त जो है हर नाम संकीर्तन के लिए जाते हुए जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, ताकि सभी को प्राणी को लाभ मिले। जो भक्ति भी नहीं है, भगवान का नाम सुनेंगे कर्णर अंदर से, जब भगवान का नाम चला जाता हृदय में, वो नहीं भी चाहता लेकिन शब्द तरंग तो हृदय में जाएगा और उसका फल मिलेगा कि पापों से मुक्त हो जाएगा, उसे पापों से मुक्त हो जाएगा, दोबारा मंदिर में आ जाएगा, भक्तों का सांगत्य में रहते हुए उनको मुक्त मिलेगा। भगवान इसलिए बोलते हैं कि निर्वैरम अनुव्रजामि हम नित्यम, ऐसे निरपेक्ष भाव से जो शुद्ध भक्ति से मेरे भक्ति करते हैं, ये उद्धव मैं उनके पीछे अनुव्रजामि हम नित्यम, हमेशा मैं उसके पीछे रहता हूँ। क्यों? पुयेतांग रेणु में मैं उनके चरणों का धूल रख से मैं शुद्ध होता हूँ, पूरा विश्व शुद्ध हो जाता है। तो भगवान शुद्ध भक्ति के लिए भक्त का अधीन रह करके कितना करना चाहते हैं, भक्त के कितना प्रशंसा करते हैं। भगवान अपना आपको वो हारने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन भक्त का हारना नहीं है। भीष्म पितामह आप जानते हैं, महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले बोला था कि नहीं, मैं तो कृष्ण बोला मेरे से क्यों बोले हो, मैं तो अस्त्र शस्त्र तो उठाऊंगा नहीं है। भीष्म पितामह बोलते मैं तो देखूंगा, तुमको अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। अभी ये है कि भगवान बोलते कि मैं तो अस्त्र उठाऊंगा नहीं, भक्त बोलते कि तुम अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, मैं ऐसा क्यों? तो भगवान क्या करते हैं आप सब कथा जानते हैं, जब उसको भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ का चक्र लेकर मारने दौड़ा, भीष्म पितामह तुरंत धनुष बाण नीचे रखकर दोनों हाथ जोड़ते हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त का वचन सभी झूठ ना हो, मैं झूठा हो गया कोई बात नहीं। प्रहलाद महाराज का भी कथा देख, शुद्ध भक्तों के ये जो दामोदर लीला है, गोवर्धन लीला, शुद्ध भक्ति का महत्व बताते हमें। भगवान प्रहलाद महाराज भी जब पिताजी को बोला, उन्हें हिरण्यकश्यप को बोले हैं, हिरण्यकश्यप क्या बोलते, तुम्हारा विष्णु किधर है? बोलते पिताजी हस्तांतर पर मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारे में भी देख रहा हूं, हस्तांतर क्या इस कंधे में भी है? प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इसका कंधे में भी है भगवान। हिरण्यकश्यप तुरंत दैनाश से अपना खड्ग निकालकर बाया उसका मुष्टि प्रहार करते हैं, कंधे पर स्तंभ फटकर उसमें भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भगवान प्रकट किस लिए हुआ? केवल अपना भक्त का वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च बूति अखिलेश सात्मना, अपना भक्त का वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान उधर हुआ है। यदि भक्त बोला ही कि भगवान इस कंधे में है, अगर इस कंधे में नहीं मिला फिर भक्त का वाणी का क्या, शुद्ध भक्त का वाणी का क्या प्रभाव है? इसलिए भगवान चाहते कि अपना शुद्ध भक्त का वाणी भक्त का सच हो, मैं झूठा होने से कोई बात नहीं। यहां पर भी देख सकते हैं जब कोई भी भगवान को वश में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना शुद्ध भक्त यशोदा मैया को देखा है कि भगवान ने देखा है ये तो मेरा मैया जो शुद्ध भक्ति में है, ये अभी थकी हुए है और निश्चल प्रेम से मेरे को बांधना चाहती है, मैं बांधाना स्वीकार करता हूं। इस भाव से भगवान जो है स्वविषेनापि, जो ये भगवान को कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, भय भी स्वयं भगवान से भयभीत हो जाता है। यद विवेक स्वयं भयम, जो भय जिससे भयभीत हो जाता है, ऐसे भगवान इस गोपी का छोटा सा हाथ में जो लकड़ी है उससे भयभीत होकर दौड़ रहे हैं, वो भी आंखों में आंसू निकल रहा, आश्चर्य बहुत आता है। लेकिन ये प्रेम का है। कभी कभी घर में भी हम देखते हैं ना, छोटा बच्चा जो है पिताजी के ऊपर गुस्सा करके लात मारेगा, थप्पड़ भी मारेगा, सिर पर भी बैठेगा, पिताजी गुस्सा करेगा और भी आनंद होता है, नहीं जितना रूठ जाता उतना आनंद होता है। तो यहां पर ही भक्त और भगवान के बीच में ऐसी प्रेम का जहां प्रेम है उसको कोई निम्न का काम नहीं होता, सब उत्सव स्तरीय होता है। ये भगवान भी भक्त के प्रेम में होकर हर भक्त का हरेक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए स्वावेशे नाप कृष्णेदम यस्तेश्वरम परम,
जो भगवान
कृष्ण जय समस्त देवी देवता और विश्व का नियंत्रण करने वाले ईश ब्रह्मा तथा इंद्र तथा शिव जी भी इनका अधीन है। भगवान किसी का अधीन नहीं रहते हैं, परंतु यदि भगवान किसी का अधीन होते केवल भक्तों का। अहम भक्त पराधीना नहीं स्वतंत्र इवत द्विजा, भगवान बोलते हैं, ये दुर्वासा महर्षि कहते हैं, ये महर्षि मैं भक्तों का अधीन हूं। जिस प्रकार भक्त जो है निरंतर मेरे को स्मरण करते हुए उनके हृदय में मैं हूं और मेरे हृदय में वो रहते हैं। मदन्यते न जाने ते नाम तेभ्यो मनागति, मेरा भक्त जो है मेरा अलावा किसी को नहीं जानते हैं और मैं भी मेरा भक्त के अलावा किसी को नहीं जानता हूं। बस कितना बड़ा भगवान का कृपा है भक्तों के ऊपर, देखिए ये केवल भक्ति से ही भगवान की इस प्रकार का कृपा प्राप्त होता है। भगवान कब बोलते हैं, हम लोग कभी बोलते हैं मैं कृष्ण के अलावा किसी को जानता नहीं हूं, बोलते हैं हम लोग, मुंह से बोलते हैं लेकिन मन में कहीं रहता है। जब हम बोल भी रहे मैं राधा रास विहार के अलावा किसी को नहीं मैं जानता हूं, तो मन तो और कहीं सब कुछ जानता है। लेकिन यदि उस भाव में अगर पूरा प्रतिष्ठित होकर हम उस भाव से रहे तो तुरंत भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो यहां भी यशोदमय उस उच्च स्थान पर थे, उस उच्च स्तरीय भक्ति में था, इसलिए उस भगवान माता के लिए भगवान जो है कृपा दिया है, ऐसा कृपा दिया है कि अभी तक किसी को नहीं मिला। जैसे प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि भगवान आप तो, मैं तो दानव वंश में जन्म लिया हूं, मेरा शरीर जो है रजो तमो गुण का प्रधान है, परंतु आप मेरे को इतना कृपा किए हो, जो कृपा आपका पुत्र ब्रह्मा जी को नहीं मिला, आपका निरंतर भक्त शुद्ध भक्त शिव जी को भी नहीं मिला। शिव जी ऐसा भक्त है वैष्णवाना यथा शंभु, जब समाज में जाकर भगवान श्री हरि का रूप का दर्शन करते हैं इतना आनंद का अनुभव करते हैं कि आंख खोलते नहीं कभी, हजारों वर्ष के बाद आंख खोलते हैं। उस समाधि कोई भंग करेगा इतना क्रोध आते हैं जैसे को उसको भस्मी कर देते हैं। एक ही दफा कामदेवता यत्न किया था उसको तपस्या भंग समाधि भंग करने के लिए, और क्रोध में आकर आंख खोल दिया तो भस्मी हो गया। क्यों, भगवान के रूप निरंतर ध्यान करते हुए दर्शन करते हुए एक अलौकिक ब्रह्मानंद का अनुभव करते रहते हैं। ऐसे शिव जी को भी आप कभी कृपा नहीं किया, जो लक्ष्मी साक्षात निरंतर आपके चरण कमलों की सेवा करती रहती है, उनकी भी आप सेवा नहीं किया, इतना कृपा नहीं किया जितना कृपा मेरे ऊपर किया। क्या किया भगवान ने, नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के ऊपर क्या कृपा किया, उनके सिर पर हाथ रखा है। हरिवंश में और नरसिंह पुराण में लिखते हैं कि उसमें जिस प्रकार कोई भी जानवर है, बिल्ली हो ये सभी, अपने बच्चों को ज्यादा प्यारा होता है, क्या होता है अपने जीभ से उसका मस्तिष्क शरीर को चाटने लगता है कि नहीं, देखा होगा ना गांव में। और नरसिंह देव भी भगवान प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर उतना प्रेम से विवल हो गया, अपने जीवा से प्रहलाद महाराज के मस्तिष्क को चाटने लगा बोलते हैं। और भगवान प्रहलाद महाराज से क्षमा का याचना करते हैं, समस्त देवता आश्चर्य हुआ है, अभी तक तो हम देखे हैं भक्त भगवान से क्षमा का याचना करते हैं, लेकिन भगवान किसी सामर्थ्य से कभी क्षमा का सवाल ही नहीं होता। अब किसी से भी क्षमा का याचना नहीं किया, आज एक छोटा सा बालक के साथ क्षमा का याचना कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि हे प्रहलाद, तुम्हारा शरीर इतना कोमल है, मैं स्पर्श करने के लिए भी मेरे को डर लगता है, ऐसे कोमल शरीर को तुम्हारा पिता इतना अहिंसा किया है, मैं देर से आया विलंब हुआ इसलिए मुझे क्षमा करो। ये भगवान के भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रेम है, केवल भक्तों के लिए बोल सकता और किसी के लिए नहीं बोल सकते, किसी भी नियंता के लिए नहीं बोल सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं जो अपना हस्त कमल जो है मेरे सिर पर रखा था, आप वो हस्त ना ब्रह्मा जी के सिर पर कभी रखा ही नहीं है, दूर से आदेश देते वो करो ये करो। और शिव जी बेचारा तब हजारों वर्ष तक समाधि में रहते, कभी आपका हस्त उनके सिर पर रखा ही नहीं। भगवती लक्ष्मी निरंतर आपके चरण कमलों का सेवा करते रहती है, परंतु फिर भी उनका हाथ सिर पर कभी हाथ रखा ही नहीं है, दूर दूर से देखते रहते बस। यही विशेष है, यहां पर भी देख सकते हैं कि यशोदा मैया जो है भगवान कृष्ण का इस तरह प्रकार का भक्ति कर रही, प्रेम कर प्रेममय भक्ति कर रही कि भगवान उसका अधीन हो गया। इसलिए भक्तिनोद ठाकुर कृष्ण संहिता में चौथा अध्याय से लेकर आठवां अध्याय तक लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का बाल्य लीला को बार बार पढ़ना चाहिए हमें। बार बार पढ़ने से जैसा मैं कहा था कि ये भगवान का हर एक लीला एक तत्स्वरूप का है। बाल्य लीला को बार बार पढ़ने से हमारे अंदर जो अनर्थ है वो सभी अनर्थ दूर हो जाएगा। एक एक राक्षस को जो संहार किया था भगवान बाल्य लीला में, जैसे कि पूतना को वध किया था, अर्थात हमारा पूतना हमारे अंदर जो चीटिंग प्रोसेस होता है ना, धोखाधड़ी करने का भावना होता है, उसको मुक्त हो जाएगा बार बार पढ़ना। और धांडकासुर का है अर्थात स्थूल बुद्धि, गधा बोलते हैं ना, तो गधा कहीं का गांव में बोलते नहीं, बार बार नहीं, स्थूल बुद्धि का। और तृणावर्त का है आर्ग्यूमेंट पर्सनालिटी, शकदास अन्य से भोज उठाना, बोलते हैं भाई सभी का भोज है, इसका करना वो करना, गांव में बोलते हैं ना सभी, इतना काम है, अरे तुम कौन होता है, कराने वाले तो वो करा रहे, वो शकदासुर का वध है। बकासुर का अर्थ है चीटिंग रिलीजन, ये भक्तिनोद ठाकुर लिखे कृष्ण संहिता में। एक एक दानव जो है एक हमारे अंदर एक एक अनर्थ को प्रदर्शन करता है, रिप्रेजेंट करते हैं। और जब बार बार पढ़ेंगे प्रेम से भक्ति से उसका तत्व समझने लगेंगे, उसका प्रभाव क्या है हमारे अंदर, ये अनर्थ है, अनर्थों से हम मुक्त हो जाएंगे। जब अनर्थों से मुक्त हो जाएगा हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, हम अग्रसर नहीं हो रहे भक्ति में, ये केवल ये अनर्थों के कारण, कहीं ना कहीं अनर्थ हमारे को पीछे खींच लेता है। अघासुर का अर्थ है कि अघासुर वध करता है कि हमारे अंदर जो क्रूर भावना को दमन करना है। मनुष्य शरीर मनुष्य जीवन में क्रूर भाव का कोई स्थान नहीं। नौवां अध्याय में नौ स्कंद में पूरा रामायण सुनाने के बाद है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, पूरा रामायण को सुने और अपने जीवन में अमल करे। पुरुषो रामचरितम श्रवण ही उपधारयन, भगवान श्री राम का कथा सुनकर उपधारयन, भगवान का जितने भी कथा होते हैं हमारे को एक उपदेश सारांश मिलता है, सारांश को हमारा जीवन में लगाना है, अमल करना है, तभी हमारे में परिवर्तन आएगा। वो उपधारयन बोलते हैं ना, आजकल सेमिनार भी चलता है नाम संकीर्तन का, सुनना है, स्मरण करना चाहिए, उसके बाद निजध्यास करना चाहिए, वो निजध्यास ही उपधारयन है। उसका फल क्या होते है, अनुशंस परु राजन कर्म बंधर मुच्यते। जो क्रूर भाव अनुशंस भाव है, मनुष्य जीवन में अनुशंस का भाव का कोई नहीं है, स्थान नहीं है, ये पशु योनि का है, राक्षस योनि का है। जो अपना को मनुष्य तो बोलते हैं, वो मनुष्य में किसी प्रकार क्रियाशील नहीं हो सकता। भागवत सात स्कंद 11 अध्याय का 8 से लेकर 12 श्लोक में नारद महर्षि मनुष्यों का 30 गुण बताते हैं, उसमें कहीं भी क्रूर स्वभाव का नहीं है। ये 5 श्लोक के लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो भगवान के लीलाओं को पढ़कर हम समझेंगे, हमारा मन में जो है अनुशंस भाव जाएंगे, हमारा अंदर दिव्य गुण आ जाएगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि भगवान का बाल्य लीलाओं को बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि हम ये अनर्थों से मुक्ति हो जाएगा, अनर्थों से मुक्ति हो जाएगा हमारे जिस लक्ष्य से हम कृष्ण भावना में आए हैं, और उससे हमारे जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। और यही आज का श्लोक का भी यही उद्देश्य है, भगवान जो है केवल अपना प्रेममय भक्ति का वशीभूत हो जाते हैं, अन्यथा भगवान को कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, केवल प्रेम से कर सकते हैं। यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न या आलोचना है तो बोल सकते हैं। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।